मेरे जिगरी दोस्तों नमस्कार फ्रेंड्स, फिलहाल हम लोग प्रकृति द्वारा प्रदत्त गुण पर बात कर रहे हैं और कल मुझे जो मेल मिले, सच पूछे तो मैं उनकी उम्मीद भी कर रहा था, बल्कि ज्यादा अच्छा यह कहना होगा कि मैं उनकी प्रतीक्षा भी कर रहा था। और वे जो मेल थे वे संदेह पर आधारित थे, यानी कि उनमें प्रश्न पूछे गए थे या यूं कह लीजिए कि जिज्ञासा व्यक्त की गई थी। और जब भी इस तरह के मेल पढ़ने के अवसर मुझे मिलते हैं मेरा मन आप सच पूछे तो खुशी से झूम उठता है, इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि नहीं, जिसने भी इसे सुना है बड़े ध्यान से सुना है, उस पर विचार किया है और विचार करने के बाद उसके दिमाग में जो विचार उठे हैं उन विचारों को मुझ तक पहुंचाया है और उसके उत्तर में जब मैंने खोज शुरू की तो कुछ न कुछ मेरे अपने ही नए विचार आए और परिपक्व हुए। तो इसलिए सबसे पहले तो मैं मेल लिखने वाले मेरे जो मित्र हैं उन सबके प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। अब देखिए कि उनका प्रश्न क्या है, उनका मैं यह जानबूझ करके कर रहा हूं उपयोग क्योंकि ज्यादातर प्रश्न इसी के इर्द गिर्द हैं। आपको ध्यान होगा कि मैंने आप सबसे कहा था कि प्रकृति हमें जो गुण देकर भेजती है दूसरों में वो बिल्कुल भिन्न होती है, यानी कि धरती पर जितने भी लोग हैं सब भिन्न भिन्न गुणों से युक्त हैं और प्रकृति कभी डुप्लीकेट काम नहीं करती, इसलिए सब भिन्न हैं या यूं कह लीजिए कि अपने आप में अनोखे हैं, अपने आप में विशेष हैं। इसलिए हमें हरेक व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए, ऐसा नहीं कि हमें जो अच्छा लग रहा है, हम जिसे सही समझते हैं, जिन गुणों को, बस हम केवल उन्हीं का ही सम्मान कर रहे हैं, उन्हीं को ही अपना समझ रहे हैं, बाकी को अपना दुश्मन या बेगाना या आप जो भी कह लीजिए उनके प्रति अरुचि दिखा रहे हैं, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। डेफिनेटली थोड़ी सी सोचने की बात है, तो इसका मतलब तो यह हुआ कि जो व्यक्ति गलत काम कर रहे हैं, मान लीजिए कि कोई तानाशाह है, कोई हत्यारा है, कोई डाकू है, है ना, कोई महाक्रोधी है, कोई बहुत बड़ा अपराधी है, तो हम ये मान करके चलें कि प्रकृति ने इसे अपराधी बना दिया, इसे क्रोधी बना दिया, इसे हत्यारा बना दिया, इसे डिक्टेटर बना दिया, तो ठीक है, पर प्रकृति ने बनाया है तो हम उसे भी उसी रूप में स्वीकार करें, क्या इसका मतलब यह है? खासकर इसी बात पर मैं आज आप सबसे अपने कुछ विचार शेयर करने जा रहा हूं। जब हम लोग स्कूल में पढ़ रहे होते हैं तो अक्सर हम लोगों को एक वाक्य रटवाया जाता है, और लेकिन जो रटवाया जाता है और जो सही वाक्य है उसमें थोड़ा सा फर्क मुझे कभी कभी दिखाई देता है। एक वाक्य आपने जरूर सुना होगा और आप बोलचाल में कभी कभी इस्तेमाल भी करते होंगे कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ठीक है, इसके बाद ठीक है आप उसको एक्सप्लेन करने लगे कि कैसे वो सामाजिक प्राणी है। यह वाक्य थोड़ा सा हल्का है, इनफैक्ट जो सही वाक्य है जो फिलोसोफर ने कहा है, शायद जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है ये अरस्तु का वाक्य है जो यूनान के फिलोसोफर रहे हैं जो प्लेटो के शिष्य थे, उन्होंने ये नहीं कहा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उन्होंने कहा कि मनुष्य बाई बर्थ, जन्म से ही एक सामाजिक प्राणी है। जब हम बाई बर्थ कहते हैं तो चीजें एकदम से बदल जाती हैं, यानी कि जैसे ही वह मनुष्य नामक प्राणी पृथ्वी पर आता है या गर्भ से बाहर आता है वैसे ही वह एक सामाजिक प्राणी बन जाता है। अब आप देखिए कि कहने का अर्थ क्या है कि मनुष्य को बड़ा होने के लिए समाज की जरूरत पड़ती है और जो परिवार है हमारा समाज की सबसे छोटी इकाई होती है। आप कल्पना करके देखिए कि क्या किसी भी बच्चे की परवरिश बिना परिवार के की जा सकती है? परिवार को आप उस रूप में मत लें, कुछ लोग तो चाहिए जो उसकी परवरिश कर सके, अभिभावक के रूप में, माता पिता के रूप में, ताऊ चाचा के रूप में, जो भी हो, समाज के रूप में, स्टेट के रूप में, राज्य के रूप में उसकी देखभाल करने वाला कोई चाहिए तभी वो बच सकता है, अदरवाइज उसकी मृत्यु हो जाएगी, वो सर्वाइव नहीं कर सकता। जबकि दूसरों में हम देखते हैं, प्राणियों में आप देखिए, पशु पक्षी, उनमें कुछ नहीं, थोड़े समय के लिए जो माँ है, स्पेशली माँ, वो ध्यान रखती है, उन्हें उनके योग्य बना देती है कि वो अपना भोजन ढूंढ सकें, वो फ्री हो जाते हैं, इसके बाद वो पहचानते भी नहीं है अपने माता पिता को। लेकिन मनुष्य के साथ ऐसा नहीं, तो बाय बर्थ वह सामाजिक प्राणी है। मैं बाई बर्थ पर क्यों जोर दे रहा हूं, इसलिए जोर दे रहा हूं कि अगर हम सामाजिक प्राणी हैं और जन्म से ही हैं, उसका कोई विकल्प हमारे पास नहीं है, तो सीधी सी बात है कि समाज नामक एक संस्था है, और अगर समाज नामक एक संस्था है तो बहुत जरूरी है कि वह संस्था अपने आप को बनाए रखने के लिए कुछ वैल्यू एस्टेब्लिश करे, जिसे आप दूसरी भाषा में कह सकते हैं कुछ कानून बनाए, कुछ परंपराएं तैयार करे, ताकि वो समाज बना रह सके, नहीं तो समाज भी नष्ट हो जाएगा। क्योंकि जिस समाज में परंपराएं नहीं होंगी, वैल्यू नहीं होंगे, एथिकल्स स्थितियां नहीं होंगी, नैतिक आचरण नहीं होंगे, वह तो एक प्रकार से एक ऐसे चौराहे की तरह हो जाएगा जहां की बत्तियां नहीं है, लाल बत्ती, हरी बत्ती, पीली बत्ती, कोई बत्ती नहीं है। जिसका जो मन कर रहा है, जहां से भी कर रहा है, वहां से अपनी बाइक कार निकालने की कोशिश कर रहा है, पता लगा कि पूरा का पूरा जो चौराहा है वो जाम हो गया है, कोई कहीं भी नहीं निकल पा रहा है। तो समाज सही तरीके से काम करता रहे और बना रहे, उसकी व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए बहुत जरूरी है कि समाज कुछ मूल्यों का निर्धारण करता है ना, वैल्यू एस्टैब्लिश करता है। और सामाजिक प्राणी होने के नाते हमसे ये उम्मीद की जाती है कि हम उन वैल्यू का पालन करेंगे, उन्हें आगे बढ़ाएंगे, ताकि समाज की व्यवस्था बनी रह सके। और समाज की अगर व्यवस्था बनी रहेगी तभी आने वाले जो मनुष्य नामक प्राणी हैं वो बने रह सकेंगे। तो सीधी सी बात है कि ऐसे मूल्य जो समाज को नष्ट करते हैं, इनमें अव्यवस्था फैलाते हैं, स्वीकार्य नहीं हो सकते। बस इसके आधार पर जिन्होंने भी मुझसे प्रश्न किए हैं वो अपने प्रश्नों के उत्तर जानने की कोशिश करें, ढूंढने की कोशिश करें, और मेरे इस बात पर आप विचार भी करें। अगर आपको कहीं इससे कहीं विरोध दिखाई देता है, मालूम पड़ता है, तो प्लीज आप मुझे लिखें, हम लोग उस पर भी आगे बातें करेंगे। तो सीधी सी बात है, देखिए, जो अपराधी है, जो हत्यारा है, जो क्रोधी है, जो डिक्टेटर है, वो समाज के इन मूल्यों से तालमेल नहीं बैठा पाता, वो इनका उल्लंघन करता है, इनके विरुद्ध चलता है। तो इसीलिए ऐसे व्यक्ति अस्वीकार्य होने चाहिए। तो दोस्तों, आज बस इतना ही, अब इजाजत चाहूंगा, नमस्कार।